शांति। आज आप हम सभी के मध्य बाबा के विशेष रतन अथक सेवाधारी हमारे आदरणीय अनिल भाई जी हम सभी के बीच पधारे हैं। मैं आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लंबे समय से इस आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं, बाबा के प्रति आपकी विशेष निष्ठा है, आप ज्ञान योग में विशेष रुचि रखने वाले हैं, सबको संतुष्ट करना, सबको खुश करना ये आपकी विशेष खूबी है। और हम देखते हैं कि हमारे अनिल भाई जी सदा हर्षित रहते हैं, सबके साथ खुश मिजाज बन करके व्यवहार करते हैं। और हम देखते हैं कि अनिल भाई जी अनेक गुणों से, अनेक विशेषताओं से संपन्न हैं, और आपने इस अलौकिक जीवन में अनेक प्रकार के अलौकिक अनुभव एकत्रित किए हैं। तो हम चाहेंगे कि आपने अपने इस अलौकिक जीवन में जो अलौकिक अनुभूतियां इकट्ठी की हैं, उनमें से कुछ एक विशेष अनुभूतियों को हम सभी के मध्य रखकर हम सभी को उसे लाभान्वित करेंगे। आदरणीय अनिल भाई जी।
ओम शांति। अनिल भाई जी से पहला प्रश्न है, आप ज्ञान में कब आए, आपकी उस समय क्या उम्र थी, लौकिक उम्र?
ओम शांति। मुझे किसी ने ज्ञान में लाया नहीं, मैं ज्ञान में कैसे आया हूँ, मधुबन कैसे आया हूँ और मधुबन समर्पित कैसे हुआ, ये दो दो मिनट में आपको अनुभव सुनाता हूँ। हमारे लौकिक घर में गुरु किए थे पहले, हमारे लौकिक घर में गुरु किए थे, और उस टाइम मैं तीसरी कक्षा में था, 7-8 साल का था उस टाइम। तो क्या तो हर दिन शाम को 15 मिनट का वो भजन वगैरह ऐसे सारा प्रोग्राम चलता था, तो अचानक मुझे वहां अनुभव होने लगे। तो अनुभव ऐसे होने लगे कि मैं लाइट में गुम हो जाता था, बहुत ऊपर से ऐसी लाइट मेरे चारों तरफ घूमती थी और सभी देखते थे, मेरे माँ बाप और भाई बहन सब देखते थे कि एक कुछ अलग अवस्था में है। तो मैं उठ के, मुझे लगता था एक कुछ गलत है, इसके लिए मैं उठ के चला जाता था। ऐसे एक साल तक मुझे बीच बीच में उतारा। उसके बाद मुझे एक पांडव भवन का सीन दिखाया गया कि पांडव भवन के अंदर क्या क्या है, जैसे झोपड़ी है, बाबा का रूम है, शांति स्तंभ है, ऐसे मुझे चक्कर लगा के फिर सामने पहाड़ी थी, उस टाइम ओम शांति भवन नहीं था। तो पहाड़ी के ऊपर मैं बैठा हूँ और मेरे मस्तिष्क से बहुत ऐसी दूर तक किरणें फैलती थी और बहुत सारे लोग मुझे कुछ, मेरे से कुछ चाहते थे, ऐसे सारा सीन मुझे दिखा देते थे और अंदर से आवाज आती थी ऐसी जगह पे आपको जाना है। तो मैंने लौकिक माँ बाप को बोला कि ऐसे मुझे लगता है कि एक दिन में आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। तो उन्होंने और मैंने भी वो हमारे गुरु को मैं ये बताया कि ऐसे से अनुभव हो रहे थे। तो गुरु ने भी बोला कि इसको कुछ ईश्वरीय संकेत मिल रहे हैं और एक दिन ये यहाँ से चला जाएगा। ओम शांति। तो गुरु ने भी ये फाइनल बोल दिया उसको ये करने के लिए कि तब से मेरे लौकिक वाले मेरे से जैसे अलग ही हो गए एक आगे। लेकिन क्या हुआ कि ये करते करते मुझे एक दिन मैं एक क्या माना 75 की बात है, मुझे कॉलेज के लिए आगे के लिए एडमिशन लेना था, इसके लिए मैं वहां से बॉम्बे आ गया और वो कॉलेज हमारे सेंटर के बिल्कुल नजदीक था, घाटकोपर सेंटर। तो मैं जब उतरा वहां पर तो बराबर सेंटर के बाद सामने मेरी बस खड़ी हो गई। तो वहां से सेंटर को जैसे उतरा मैं तो शाम के 8 बज गए थे, तो वहां पर बड़ी कास्केट लगाई थी और अंदर योग का रूम सारा नीचे से दिखाई पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि कुछ खास होगा, इसके लिए मैं अंदर जाके उनको पूछने गया। तो उन्होंने मुझे सवेरे सवेरे बोला कि सवेरे आ जाओ आप, अभी टाइम नहीं है। तो मैं सवेरे गया, तो सवेरे जाते ही उन्होंने मुझे साप्ताहिक कोर्स के लिए बिठा दिया वहां पर। तो साप्ताहिक कोर्स के पहले ही दिन मैंने नलिनी बेन, हमारे टीचर है नलिनी बेन, को मैंने ये सारी पांडव का सीन, जब मैं आया नहीं था यहाँ पर, लेकिन पांडवों ने ये भी मुझे पता नहीं था। तो मैंने एक सीन उनको दिखाया कि पांडव भवन के अंदर क्या क्या है, और मुझे ऐसे चक्कर लगा रहे थे, और एक सीन मैंने बोला कि मुझे ऐसे अंदर से आवाज आती है कि ऐसी जगह पे आपको जाना है। तो उन्होंने मुझे सीधा क्लास में बिठा दिया। तो उस दिन वो गुरुवार था, गुरुवार का दिन भोग का दिन, तो उन्होंने मुझे संदेशी के सामने बिठा दिया था। तो पहली बार ऐसे हुआ कि मैं संदेशी के सामने ट्रांस में चला गया, और ट्रांस में जाते फिर मुझे वही सीन मुझे दोबारा दिखाया गया, देखा पांडव उनका सीन, और बाबा ने मुझे खुद डायरेक्ट बोल दिया कि आपको ऐसी जगह पे जाना है। तो इन्होंने मुझे तुरंत मुझे एक युगल के साथ मुझे यहाँ पर भेज दिया। यहाँ भेजते जैसे मैं पांडव उनके गेट से यहाँ पर अंदर उतरा हमें, तो दादी और दीदी बीच के पैसेज में चक्कर लगा रहे थे। तो दीदी की जैसे मेरे ऊपर नजर पड़ गई, दीदी ने मुझे सीधा ही बोल दिया कि आपको यहाँ रहना है, जबकि मैं ये पहचानता नहीं दादी और दीदी है। तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं मैं कहाँ फंस जाऊँ, इसी के लिए मैं दूसरे दिन इनको बिना बता के यहाँ से बॉम्बे चला गया। तो दूसरे दिन एक तो मुझे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, तो इन्होंने फिर मुझे नले में इनको फोन किया कि भाई को आपको यहाँ पर भेजना है। तो एक मास के बाद मुझे फिर यहाँ पर इन्होंने भेज दिया, वहां सेंटर से मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो ऐसे हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर उतरा, तो उसी दिन मधुनानु का दादी का क्लास था, ये करके दादी ने मुझे बोला कि आपको मधुनानु के क्लास में बैठना है। लेकिन वो क्लास ऐसे था कि उसका सब्जेक्ट था कि बाबा के दिल में मधुबन निवासी कौन, ये सब्जेक्ट था, और बहुत ऑफिशियल क्लास था। जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे धर्मराज जी सामने खड़े है, बिल्कुल पिंड तो मेरे इतनी साइलेंस थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बात करने की। तो पूरा एक डेढ़ घंटे का दादी का क्लास दादी बोलती गई वहां से। तो इतना मुझे सवेरे ऐसे लगा कि इतनी सारी तैयारी तो मैंने की नहीं है। तो बाबा को मैंने लिख के लेटर दे दिया बाबा कमरे में कि मैंने अभी तक इतना तैयार नहीं हूँ मधुबनवासी बनने के लिए कि मैं नहीं रहूंगा ऐसे। तो दूसरे दिन जगदीश भाई का क्लास यहाँ पर था और मम्मा के ऊपर था, तो उन्होंने भी मम्मा के ऊपर ऐसे क्लास किया, तो उस क्लास मैंने अभी तक किसी मुंह से सुना ही नहीं है। ऐसे क्लास किया कि मम्मा प्रैक्टिकल या ऑफिस में या बीच में या कहीं घूम रहे ऐसे आवाज होता था, इतना प्रैक्टिकल क्लास किया। तो मेरी दुविधा में ये क्या कि एक तरफ यहाँ से जाना है और एक तरफ मम्मा की इतनी अनुभूति उन्होंने की। तो मैंने दादी को बोला कि ऐसी सी बात है कि मैं इतनी तैयारी मेरी नहीं है कि मैं समर्पित हो जाऊं। तो उसने दूसरे दिन बाबा का ये था, बाबा का प्रोग्राम था। तो क्या बाबा का प्रोग्राम पूरा होने के बाद जैसे भोग लगाते समय दादियां वगैरह सब अलग से मिलती है, तो उन्होंने मेरे और भाई और दादी दीदी ने मुझे अलग से अब लास्ट में मुझे बाबा को एक मिलाया और बाबा को बोला कि आप हमको इसको रखना है लेकिन ये मना करते हैं। तो बाबा ने मुझे बोला कि आपका प्रोग्राम मधुबन का फाइनल है, लेकिन बाबा ने मुझे ये बात पहले बताई थी कि आपने अभी तक आपके सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी। ये प्रश्न इसके लिए पूछा था कि जब मैं ज्ञान में चालू हुआ है तब से मैं मेरे शुरू से एक आदत थी कि रात के सोने से पहले बाबा को एक लेटर लिखना है, और लेटर लिख के और इंग्लिश में लेटर लिखता था कि घर के लोग वो पढ़े नहीं ऐसे, तो उनको मालूम नहीं पड़े इसके लिए। और लास्ट में मैं उस ऐसे लिखता था साहब कि बाबा मेरे ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं तो बिल्कुल पक्का हूँ लास्ट तक मैं रहूंगा, जब कमजोर बच्चे है तो उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देना, ऐसे मैंने उसके लास्ट में लिख देता था ऐसे। तो बाबा ने मुझे वही बोला, वो लेटर की स्मृति दी, आप लेटर लिखते थे तो उसमें आप क्या लिखते थे। तो मैंने बोला मेरी सारी जिम्मेदारी, तो क्योंकि मैं उसमें अपनी सारे दिल की बात ली, क्योंकि घर के लोग मेरे से बिल्कुल ही बात नहीं करते थे ऐसे, रास्ते में जाओ तो मैं इधर से जाओ तो दूसरे तरफ से वो निकल जाते थे, ऐसे चलता था। 5 साल पूरा उनका टेस्ट चला मेरे साथ। तो मैंने बाबा को बोला कि मैंने आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रखी है। तो बाबा ने बोला जिसके ऊपर जिम्मेदारी वो खुद ही देख लेगा। लेकिन मैंने फिर बाबा से दिल से बात की, मैं बोला मेरा ये प्रॉब्लम है कि माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी कम्प्लीट मेरे ऊपर है, और जहाँ पर हम रहते थे वहाँ यूवी सोल का भी बहुत प्रभाव था, तो मेरे ऊपर भी वो सारी बात थी। तो मैंने बोला जब तक माँ बाप मुझे खुद दिल से छुट्टी नहीं देंगे, उनके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, तब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो बाबा ने मुझे ये बात दी कि जो मेरा जीवन ही पूरा परिवर्तन हुआ। बाबा ने मुझे बोला कि बाबा जिसकी मदद लेता है यज्ञ के लिए उसकी जिम्मेदारी का ध्यान बाबा खुद ही रखता है। यह बात मुझे अभी तक सवेरे सवेरे जब भी मैं उठता हूँ मेरे दिल में, क्योंकि माँ बाप पूरे डिपेंड मेरे ऊपर थे। तो बात ऐसी हो गई, वो बात मिट गई, लेकिन बाबा ने मुझे इतना बोला कि आपको सिर्फ दो बातें करनी है, एक आपको रहना यही है, लेकिन आपको सकाश के लिए टाइम फिक्स करने और आपको यहाँ बैठ के आपको वहां जाने जाको लौकिक है, एक करना है। और दूसरी बात है, आपको जब भी टाइम मिले दिन में आधा मिनट तो एक मिनट शरीर से डिटेच होने, ये दो बातें आप करते रहो तो आप यूजल और एक जिम्मेदारी से प्रभाव से आप ही मुक्त हो जाएंगे। तो जैसे ही बाबा ने बोला तो मुझे ध्यान लग गई, मैं पूरा पूरा दिन यही करता था फॉरेनर्स खुद पहचानते थे, बोलते थे कि आपके अंदर और डिपार्टमेंट वाले इनके अंदर अलग से महसूस क्यों होता है, क्योंकि मैं इतना जितना भी थे उतनी प्रैक्टिस में ज्यादा करता था। मेरी ड्यूटी ऐसे कि मैं कम से कम 15-16 घंटा मुझे बिजी रहना पड़ता है, तो जितना बिजी उतना मैं डिटैच हो जाता था ऐसे। तो फॉरेनर्स को अनुभव करते थे ये बातें सारी, तो उसका असर ऐसे हुआ कि मैं यहाँ पर और माँ बाप वहां पर मुझे देखते थे। हमारा परिवार 15-16 लोगों का परिवार है, तो लोग प्रैक्टिकल मुझे वहां देखते थे। एक दो बार ऐसे हुआ कि मैंने उनको सही समय पर कि इस समय आप लोग कहाँ पर हो, कौन कौन साथ में बैठे, कपड़े सहित उनका ड्रेस सहित उनको मैंने बता दिया कि इस टाइम आप इस ड्रेस पे बैठे हो ऐसे। तो उनको लगा कि सचमुच इसके पास कुछ भगवान की शक्ति है। तो ऐसे करके उन्होंने सारा थोड़ा थोड़ा परिवर्तन चालू हो गया। लेकिन बात क्या हुआ कि जब मैं पहली बार माना ये सब बातें इतने तक हो गई, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरी मधुबन की टेस्ट, पहले 5 साल लौकिक वाले की टेस्ट हो गई, यहाँ पर आने के बाद मधुबन में मेरी सही टेस्ट मधुबन में चालू हो गई। तो वो स्टेज ये थी कि मैं जस्ट दूसरी बार मैं जब बॉम्बे से यहाँ पर निकल रहा था तो घर के लोगों को जब मालूम पड़ा कि निकल रहा है तो उन्होंने मेरे बैग के सारे पैसे और ड्रेस सारे निकाल के रख दिए और बैग लॉक करके रख दिए। और सवेरे सवेरे मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी, मैं बैग लेकर ट्रेन पर आ गया और खोल के देखा तो सिर्फ टिकट अंदर था, तो मुझे पता नहीं था कि ऊपर भी आना है अब रोड से। तो मैं बैठ के अब रोड पहुंच गया, लेकिन वहां पर रात को 9 बजे पहुंच गया। तो फिर ऊपर आने का मेरे पास पैसा नहीं था, सारे टैक्सी वाले चिल्ला रहे थे 10 रुपया 10 रुपया अब रोड। तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, तो मैंने सोचा अभी क्या करूं, मैंने सोचा चलो अभी पैदल ही निकल के सभी तक पहुंच जाऊंगा ऐसे। तो मैं आधा घंटा तक मैं पैदल ही निकला ऊपर। तो पीछे से एक टैक्सी वाला आया और उसने बोला बैठो अंदर। मैं बोला मेरे पास सिर्फ खाली बैग है, मेरे पास कुछ देने के लिए कुछ नहीं है ऐसे। तो फिर उसने बोला बैठो, फिर उसने मुझे यहाँ गेट तक पहुंचा दिया और मुझे कुछ पूछा ही नहीं, वो सीधा निकल के चला गया ऐसे। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम इतनी ठंडी थी यहाँ पर और एक ही ड्रेस, आपको पता नहीं कि 10 मास में सिर्फ एक ही ड्रेस जो सिलाई किया हुआ मैं पहन के आया हुआ था वही ड्रेस मेरे पास था, रात को मैं धुलाई करता था सवेरे वो पहनता था। तो इतनी ठंडी में मुझे कैसे हो क्या, मुझे पूरा पाकिस्तान मुझे बुखार चला और एक क्लाइमेट मुझे बिल्कुल बॉम्बे का क्लाइमेट और एक क्लाइमेट मुझे बिल्कुल सूट नहीं होता था। तो एक समय ऐसे आ गया यहाँ पर और इन्होंने सारे जितने भी ट्रीटमेंट बुखार के वो सारे मेरे ऊपर ही टेस्ट किए, ऐसे मलेरिया के टाइफाइड के टीबी के सारे ट्रीटमेंट सारे कोर्स मेरे ऊपर किए। तो बुखार तो ठीक नहीं हुआ लेकिन बुखार मेरे वीकनेस और ही बढ़ गया ऐसे। तो मैं खड़ा रहता था तो भी मुझे चक्कर आती थी। तो एक समय ऐसे हुआ 10 बजे रात को मुझे इतना तेज बुखार आ गया, सुखधाम से मैं पांडव भवन तक 5 बार बैठ के चला गया, चक्कर आती खड़ा रहो चक्कर आती थी। और देखा तो डिस्पेंसरी भी बंद हो गई, फिर क्या कर बाबा के रूम में गया और बाबा को बोला अभी मैं हार गया, मैं अभी यहाँ नहीं रहूंगा ऐसे बाबा को बोला मैंने। लेकिन ये अनुभव एक खास ऐसे था कि मैं जैसे ही कमरे में गया 12 बजे तक मुझे पता नहीं पड़ा मैं कैसे सोया, 12 बजे के बाद मैं ना घर में माना मैंने लाइट ऑन नहीं की थी और मेरे पैर और सिर से पूरा बहुत ऊपर से किरणें पूरा प्रेस होती थी, पूरा ऐसे 2 घंटा मुझे ऐसे प्रेस किया पूरा ऐसे प्रेस ही होती थी पूरी, बहुत ऊपर से किरणें आती थी ऐसे। और 12 बजे के 2 बजे तक ऐसे सीन चला और 2 बजे के बाद मैं इतना फ्रेश हो गया कि मुझे सवेरे तक नींद ही नहीं आई और मैंने बिना दवाई से मेरा बुखार ठीक हो गया ऐसे। तो मैं दूसरे दिन यहाँ मदन वालों की भट्टी था तो भट्टी में दादी को मैंने अनुभव सुनाया, तो दादी ने मुझे बोला इतनी बात थी, कभी सीरियस भी हो सकती थी तो डिसेंट्री बंद थी तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए, मैं इंतजाम कर रहा था। तो दादी को मैंने बोला मैं आपके पास आता तो यह अनुभव मैं नहीं कर सकता था ऐसे बात बोला दादी को। फिर दूसरी बात थी कि इतना तक तो ठीक हो गया लेकिन मेरी जो काम करने की जो एक्यूरेट और सब विश्वास से सारी काम करने की जो आदत थी शुरू से संस्कार थे मेरे, तो बड़ों के ऊपर मेरा बहुत इम्प्रेशन था ऐसे। तो हर जगह पे मुझे आगे करते थे मोस्टली दीदी मुझे हर जगह पे, तो कई जो सीनियर थे तो मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश चालू की उन्होंने। तो ऐसी बात थी कि उन्होंने इतनी कंप्लेंट अलग अलग प्रकार की मेरे की, तो एक समय ऐसे आ गया कि बड़ों ने भी और दादी सहित मुझे ऐसे सीधा बोला कि आपकी चलन ठीक नहीं, आपको यहाँ से जाना है यहाँ से। मैं बोला कि मेरे ने ऐसे कुछ किया ही नहीं, ये सब यात्रा आपको यहाँ से जाना है। मैं बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा। रात को मैंने सारे पैक किया सारा, सवेरे मुझे 5 बजे यहां से निकलना था। लेकिन मुझे तो बहुत अंदर से दिल तो मेरी खाती थी कि सब बातें कैसी होगी। तो फिर मैं 3 बजे नींद नहीं आई मुझे रात पर, मैं 3 बजे जहां पर अभी लिफ्ट है किचन की वहां पर मैं बैठ गया। तो बैठते हुए पापा ने मुझे ऊपर खींच लिया और वो सीन बहुत अच्छी बात थी। मैं खास बताने की बात ये थी कि बाबा ने मुझे उस टाइम मुझे ये बात बताई कि यहाँ मधुबन का जो परिवर्तन होने वाला आगे चल के वो मुझे सीन अच्छी तरह मुझे 10 मिनट में ऊपर में था और मुझे 3 बजे कोई भी सामने नहीं था, न योग चालू भी नहीं हुआ था। तो मधुबन परिवर्तन आगे चल के कैसे कैसे होने वाला है और उस टाइम बाबा ने बोला ओ मधुबन मेरे दिल में मैंने मेरे रिश्ते में कौन सा मधुबन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और वो मधुबन में मैंने आपको रखा हुआ है जो आप अभी देख रहे हो वो नहीं है, आप अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मैंने किसी के हाथ में भी कुछ नहीं दिया है। ये बाबा ने मुझे उसी टाइम मैसेज दिया। फिर भी मैंने सोचा कि बाबा ने बोला है तो बाबा की भी टेस्ट ले लूं। मैंने क्या किया कि तुरंत मैं सवेरे उठ के निकल पड़ा। मैं बोला कि बाबा ने बोला है लेकिन मुझे रोकने वाला तो भी कोई तो मैं रुकू। तो हुआ क्या है कि दादी को ये अंदर से ख्याल आया कि इसको कुछ गलत मैसेज मिला है। तो दादी गेट पर ही खड़ी थी कि मुझे इंतजार में कि मैं जैसे बाहर हूं तो उसको रोक दे। लेकिन मैंने क्या दादी से तरफ देखा ही नहीं, मैंने सीधा मैं बाहर निकल रहा था। दादी ने तुरंत मुझे रोका, बोला कि आपको जाना नहीं है, मुझे लगता है आपके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं कि गलत है ऐसे। मैं बोला मैं खुद बोल रहा तो आपने नहीं सुना और अभी आप बता रहे हो। कहते नहीं मुझे इसमें निकलना हो नहीं बात। दादी ने बोला आपको तो ही जाना है करके। तभी मुझे पता पड़ा कि बाबा ने अपना कार्य किया है सारा ऐसे। फिर मैं वहां से रुक गया। तो सीन बहुत अच्छा था, उस बातें ये नहीं करता हूं। लेकिन मैंने खास मुझे आपको अभी ज्यादा समय 5:45 बजे मुझे बोला है कि पूरा करने, इसके लिए मैं अनुभव की 2-3 ही बातें आपको बताई, ज्यादा नहीं बताया। ओम शांति। मैं क्या 75 में आया उधर ज्ञान में 80 में मुझे एक मशीन के लिए क्या पहले मुझे क्या मेन बात थी कि बाबा ने मुझे जो बोला कि आपको यहाँ रहना है तो बाबा ने मुझे ये भी बताया कि आपको इसी डिपार्टमेंट के लिए रहना है। तो लॉन्ड्री यहाँ पर पहले नहीं थी उस टाइम, यहाँ से धुलाई करते थे। और मुझे बाबा ने उस टाइम में सीन दिखाया था मुझे शुरू से योग की लिफ्ट बाबा ने मुझे शुरू से दी थी। और एक बात मेन बात ये थी कि बचपन से मुझे खास ऐसे लगता था कि मुझे जो हमारा लौकिक आप देखेंगे 15 सारे लोग मेंबर हमारे पास है, आप खड़े रखेंगे मुझे साथ तो वो लोग और मैं आपको पता पड़ेगा हम अलग है। मुझे ऐसे लगता था कि मैं परिवार का नहीं हूँ दूसरे परिवार का, ऐसे मुझे शुरू से मुझे अंदर से ऐसे लगता था। तो बाबा ने मुझे ये सीन दिखाया कि फॉरेनर्स के लिए खास, और मैं फॉरेन गया नहीं हूँ लेकिन फॉरेन की कंट्री एक एक मुझे जैसे पिक्चर दिखाते थे खास मुझे दिखाया ऊपर से, और इनके सेवा के लिए आपको यहाँ रहना है ऐसे मुझे खास बोला। और तब मैंने जबकि मैं लॉन्ड्री का कुछ भी नहीं जानता था और बाबा ने जैसे बोला तो मैं बोला अभी लॉन्ड्री का जानता हूँ नहीं मैं तो फिर अभी क्या करना है। फिर भी बाबा ने बोला इसके लिए मैंने फिर लॉन्ड्री का मशीन हमारे सेंटर से लॉन्ड्री की मशीन में यहाँ पर लगा के 80 में मैंने ये चालू किया। फिर मेरा कॉलेज वगैरह सब करके 86 पे मैं समर्पित के लिए यहाँ पर आ गया करके। उसके बाद ये सारा मैंने जो टेस्ट मैंने बताया कि मुझे यहाँ से निकालने सारी किया तो बाबा ने मुझे इस टाइम रोका मुझे ये करने के लिए। तो मुझे सीन दिखाया बाबा ने ये मधुबन का, वो सीन भी मैंने दूसरे दिन बाबा दादी को बताया कि दादी को बताया कि जब दादी मुझे रोका तब मैंने बाबा दादी को बोला कि बाबा ने मुझे ये सीन दिखा के मुझे रोका था लेकिन बाबा के टेस्ट लेने के लिए मैं निकल रहा था, नहीं तो बाबा ने मुझे पहले ही मुझे रुकने के लिए बोला था। तो दादी ने मुझे बोला कि इतना सीन तो बहुत कम लोगों को बाहर दिखा रहे थे, आपको यहाँ से जा रहे। तो मैं बोला मेरी आपके क्लास में मेरी हिम्मत हार गई कि आपने इतना उस टाइम क्लास पावरफुल किया तो मुझे लगा कि मैं बाई चांस फेल हो जाओ यहाँ पर। तो बाबा दादी ने मुझे बोला बाबा ने आपको बोला है तो बाबा यहाँ रखने के लिए आपको हिम्मत भी दे देंगे ऐसे। बाबा दादी ने बोल के मारा ये हिम्मत मुझे आ गई और मैं अभी तक अभी 30-35 साल हो गए बैठा हूँ यहाँ पर ज्ञान में। तो मुझे 40 साल हो गए 75 से ज्ञान में मैं चल रहा हूँ। और ये जो सीन मैंने तो सेंटर पर नलिन बेन को बताया, अभी भी नलिन बेन याद करते है कि आपको पहले से बाबा ने ये सारा पांडव भवन पूरा मुझे पहले से सब दिखाया था। हाँ एक वो बात थी कि एविल सोल का बाबा ने मुझे एक किया था कि बाबा ने खुद मुझे एक किया था एक बार मुझे अनुभव मुझे जैसे मैंने बाबा को बोला कि क्योंकि मैंने माँ को और मुझे बहुत तंग करते थे वो एविल सोल का बाबा, तो मुझे बाबा ने एविल सोल का आवाज एक किया उन्होंने कि ऊपर से एविल सोल कैसे आवाज का आवाज कैसे सुनाई पड़ता है और यूजफुल अटैक कैसे करते है, वो मुझे बाबा ने प्रैक्टिकल दिखाया। तो मैं आपको बता दूं, इससे इतने ज्यादा नहीं बता देता, लेकिन यूजफुल का अटैक ऐसे होता है कि वो पूरा लाइट लाइट में वो सीधा हमारे ऊपर ऐसे अटैक करता है कि हमारी बुद्धि और ब्रेन हमारा बिल्कुल काम नहीं करता है। हम उसी लाइट में जैसे हम उसी के हो जाते ऐसे। और बाबा भी ट्रांसमिट ये अनुभव करता है कि बाबा भी लाइट का ये उपयोग करता है, लेकिन बाबा का उपयोग करने का तरीका अलग होता है। वो लाइट शक्तिशाली होते है और इनकी लाइट शक्तिशाली नहीं होती, इनकी लाइट वो अधीन करने की होती है लाइट। वो बाबा ने वो अनुभव मुझे करा कि यूविस्वर ऐसे अटैक करते है, और यूविस्वर की आवाज भी बाबा ने मुझे स्पष्ट ये किया। और बाद में मुझे बोला कि आपको जड़े से डिटैच होने का आपको ये करना है, और बंधन क्या क्या आते है वो बाबा ने मुझे बोला कि ये यूविस्वर के बंधन हरेक के पास आते है, ऐसे नहीं कि आपके ऊपर ही है, कि हमारे ऊपर जो जो हमारे लौकिक के लोग और जो भी हमारे कनेक्शन में जो लोग गए हुए उनका हरेक का कर्म का हिसाब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते वो हमारे सामने आते हैं। और उसके बंधन से मुक्त होने का ये दो तरीका है कि सकाश का टाइम आप फिक्स कर दो और एक डिटैच होने का, ये दो आप करेंगे तो हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। तो सकाश का जो मैंने एक या यहाँ बैठ के वहां जाने की प्रैक्टिस बाबा ने मुझे खुद कराई ये बात। और वो बात क्या थी कि उसी टाइम यहाँ पर बॉम्बे में बाउंस फोट हुए थे उस टाइम, और वहां तो बहुत सारी बातें हुई थी। और उस टाइम गुरुवार था और यहाँ प्रमुख शांति भवन के ऊपर भोग लग रहा था, और गुलजार दादी के थ्रू मैं किया था, बाबा ने वो मैसेज दिया था। बाबा ने बोला था कि इस टाइम आप क्या सेवा करेंगे बॉम्बे जाके, क्या इस टाइम आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हो? तो सभी ने बोला डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि वहां हंगामा था। तो आप कैसे उनकी सेवा करेंगे, ऐसे कौन सा एक सेवा करने के लिए तैयार है? तो मुझे दिल में वो बात इतनी जच गई, मैं बाबा को आके बोल दिया कि सेवा मैं करूंगा। और मैंने बाबा को बोला इस सेवा मैं एक मास के अंदर फाइनल करके दिखा दूंगा कि मैं यहाँ पर हूँ और लोग मुझे वहां देखे। लेकिन मैंने एक हफ्ते में एक सक्सेस किया, मेरे ऐसी लगन थी कुछ को पता भी नहीं पड़ता था शाम को मैं कहाँ हूँ, पूरे धुन लोग के मैं यहाँ बैठ के मुझे बाबा ने खुद कराई प्रैक्टिस थी कि शरीर से कैसे अलग होना है और कैसे जाना है। और उसके बाद मैंने सब घर के लोगों को बताना शुरू किया। बाद में मैंने सोचा कि घर के लोगों को तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ क्योंकि वहां से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं मनसा तो उनको देख सकता हूँ, तो प्रैक्टिकल ऐसे भी हो सकता है। तो कई ऐसी जगह पे कि जिससे मैंने कनेक्शन भी नहीं है और मैंने उनको देखा भी नहीं, ऐसी जगह पे ट्राई करूँ। तो फिर मैंने वो एक भाई को ऐसी प्रॉब्लम था, ऐसे दो तीन जगह पे मैंने यहाँ से कि जहाँ से 2,500 किलोमीटर अंतर था वैसे जगह पे मैंने वो ट्राई किया, तो वो भी सही निकला सारी बातें। फिर मैंने बातें छोड़ दी, मैं बोला ये सारी बातें करते बैठो तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि एक बार हम सक्सेस होते हैं ना तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या होता है कि जब मुझे बाबा ने ट्रांस के अनुभव कराए तो ट्रांस की लिप्त मुझे पहले से थी, बाबा ने वतन का इतना क्लियर अनुभव बाबा ने कराया था। जब मैं एक वीकनेस मेरे में आ गया था ना, तो बाबा कैसी शक्ति आत्मा में भरता है वतन में, वो बाबा ने इतना क्लियर अनुभव कराया था। और वतन का बाबा ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ से संदेश कैसे जाते वो अनुभव कराया बाबा ने मुझे था। और बाबा ने मुझे पूरा सीन इस ढंग से कहा था, आत्मा में शक्ति बाबा ऐसी भर देते हैं कि जैसे हम पानी जैसे कोल्ड जैसे फ्रिज का पानी हम अंदर भर पी लेते तो कैसे लगता है कि अंदर पानी जा रहे है ना, अंदर हम खुद महसूस करते हैं। तो उस ढंग से बाबा की किरणें जब हमारे अंदर प्रवेश करते तो हम खुद महसूस करते कि सचमुच आत्मा शक्ति महसूस हो रही है आत्मा में। वो अनुभव बाबा ने मुझे खास कराया था सारा अनुभव। तो क्या होता है कि वो मैं जैसे बढ़ता था मैं तुरंत डिटैच हो जाता था, ऐसी बार बार बात हो जाती थी, तो फिर मैं योग में नहीं बैठ सकता था। तो मैं दो मास मैंने एक प्रैक्टिस माना मुझे ये नई अनुभव हो, इसके लिए मैंने फिर योग छोड़ दिया, योग ही करना छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए बार बार। फिर मैंने ज्ञान की बात ज्ञान का चिंता नहीं करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ये चालू किया कि मैं क्लास में बैठता था सवेरे मुरली में हरेक का योग, मुझे पता है कि जब तक शांतिवन नहीं हुआ था तो किसी का भी रात को क्लास होता तो कोई छोटी बहन का क्लास हो कोई भाई का क्लास हो हर टाइम में, जबकि इतने साल में वह करता हूँ कि कोई 2 साल का भी कोई क्लास करेगा तो भी मैं क्लास में बैठता था। और जो क्लास में पॉइंट मिलेंगे किसी के चिंतन में पॉइंट मिलेंगे और जो मुरली में वो मैं कभी नोटबुक लेके नहीं जाता था, रात को मैं सारा चिंतन लिखता था कि मैंने क्या क्या दिन में सुनाया और रात में लिख के रखता था। वो अभी तक मेरे बात चलती रहती है कि रात को जब तक मैं कुछ लिखता नहीं हूँ जब तक मैं सोता नहीं हूँ, तो मेरे सारे जो नोट्स हैं वो मेरे खुद के चिंतन के नोट्स होते हैं कि मैं कभी किताबें फिर मैं अभी तक किताब पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं, कि मेरी ड्यूटी इतनी टाइट रहती है कि मैं तीनों कॉम्प्लेक्स में देखना है, भागना है, करना है, पर जिम्मेदारी भी 15-16 मशीन, कभी भी मशीन खराब हो जाती है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, इसमें तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन ये मैंने अभी तक छोड़ा नहीं, और ऐसे नहीं कि योग मैंने छोड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रैक्टिस बंद हो करने के लिए, क्योंकि मुझे वो गलत लगता था, कोई ऐसे नहीं कि यूवी सुल्का मुझे फिर कोई अटैक हो जाए, तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी। ऐसे मेरे विशेषता कि बचपन से मुझे भी पता नहीं पड़ा था कि, लेकिन मुझे अंदर से बचपन से मुझे लगता था कि उस लौकिक परिवार का मैं नहीं हूँ, लौकिक परिवार का, ऐसे मुझे बचपन से ही लगता था। तो उसी कारण जब ये लोगों ने मुझे, इन्होंने जो बोला कि मेरे हमारे जो गुरु ने कि यहाँ से चला जाएगा, तब से हमारे घर के लोगों ने मुझे शुरू किया। आपको पता, मैं वो बात नहीं बता देता हूँ क्या क्या बारी बात हो गई, लेकिन मुझे क्या था कि मुझे अंदर से बहुत ये था कि डॉक्टर बनने का मुझे पहले से दिल थी बहुत, और मैंने शरीर का इतना स्टडी किया कि जो भी ऐसे कुछ परिचय मुझे सिंपल दवाई तो मुझे ऐसे देखते ही मुझे तुरंत मालूम पड़ जाता ऐसे। लेकिन घर के लोगों को पता पड़ा कि डॉक्टर बने, तो उन्होंने क्या किया कि इसको रोकने के लिए मुझे सारी कॉलेज की फीस सब बंद कर दी, और कॉलेज सोमया कॉलेज तो आपको पता है बॉम्बे में कितना हाई लेवल का कॉलेज, वहां पर बड़े बड़े माना ऐसी फीस होती तो ही एडमिशन मिलता है, तो इसके लिए मुझे वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या था कि मुझे दो तीन लोगों को ऐसे सीधा सीधा मैं देख के, जिनको दो दो साल तक उन्होंने दवाई ली तो भी ठीक नहीं हुए थे, तो मैं सिर्फ देखते उनको ये क्या ठीक हो गए, तो ऐसी बातें जैसे चमत्कार ऐसी बातें हो गई, मैं इतना तो परफेक्ट नहीं हूं। लेकिन एक बहन दो साल तक सिर दर्द के ऊपर दवाई लेती थी, और नॉन वे की बहन थी, और जब मुझे क्लास में जाते समय हमेशा वो देखती थी, तो एक बार मुझे उसने इशारा किया तो मैंने उसको सिर्फ हाथ में हाथ पकड़ा, तो मुझे तुरंत ऐसे लगा कि पूरा मुझे शरीर का पूरा अंदर का पता पड़ा, ऐसे मुझे लगा, और मैंने सिर्फ एक बात में मुझे उसको एक एक डोज दे दिया, वो कम्प्लीट ठीक हुई, तो उसको लगा कि इसके पास कुछ है, तो मेरे पीछे लग गई थे, आपको आप जहां पर जाते हो आप मुझे लेके चलो, तो मैं तो सेंटर पर लेके गया, तो वही बात उन्होंने मेरे घर के लोगों ने देख ली कि बहन को सेंटर पर लेके जा रहे, तो उन्होंने तुरंत मेरे चाचा वगैरह सभी ने मुझे तुरंत क्या दूसरे दिन क्लास में आने के बाद, तो पास में नन्हे बहन के पास गए और बोले कि बहन के साथ इसका चक्कर है, इसका चलन ठीक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सब बात एक ही। तो मुझे तो ये अंदर से पता नहीं था, मैं जैसे दूसरे दिन गया उधर एक करके सेंटर पर, तो मुझे सेंटर के दरवाजे से अंदर ही नहीं दिया नन्हे बहन ने, मैं बोला कि आपके चलन ठीक नहीं, आपको अंदर नहीं आना। मैं बोला क्या हुआ है सब बात पे, मैं बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था, आपके चलन ठीक है, आपको ना आना है सेंटर पर, ना आपको मधुबन आपको भेजेंगे, ना आपको मुरली देंगे, कुछ नहीं करें, आपको सीधा बाहर जाना। मुझे तो ऐसे लगा कि ये सब आखिर हुआ क्या, मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ा, मैं सीधा सीधा आ गया घर में आ गया। मैं बोला ठीक है जो होगा तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे पूरी रात न दिन में चैन पड़ी, रात में मुझे नींद नहीं आई, रात सवेरे फिर 2 बजे मैं टेरिस पर बॉम्बे में टेरिस पर गया, अंधेरे में बैठ गया, 2 बजे मुझे बाबा ने खींच लिया ऊपर, और मैंने बाबा को सीधा बोला कि इस सब बात क्या हुआ कि मैं इतना होश में ज्ञान में चला, और अभी मुझे सब तरफ से, क्योंकि मैं अपने पैसा नहीं कमाता था तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता था, ये करके मैं बोला सारा आधार ऐसे कि लौकिक के ऊपर है, लौकिक आधार साथ देंगे तो ही मैं चल सकता हूँ, तो ये सब बातें क्या हुआ। तो बाबा ने मुझे सीधा बोला जैसे सेंटर पर बोला है वैसे ही आप करो। मैं बोला क्या, सेंटर से जाने के लिए बोला, घर से जाने के लिए मुझे बोला ऐसे, मुझे सिर्फ बोला कि आपको जैसे बोला वही करने है आपको। मैं बोला ठीक है, मैं जैसे सेंटर पर गया, नीलम को बोला ठीक आज से आप लोगों का कनेक्शन कट, मैं आपको सेंटर पर अपने सेंटर कभी नहीं आऊंगा मैं, और फिर घर से पर भी चला गया करके, इन खान पान की सारी बातें सब बहुत सारी बातें होगी। उससे टाइम मुझे बाबा ने ये मैसेज पहली बार दिया था कि मैसेज, क्योंकि मैं लेटर लिखता था, तब मुझे बाबा ने बोला था कि आपकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर रख रहे हो, जिसके ऊपर जिम्मेदारी आप उसके वो खुद ही आपकी सारी बातें देख लेगा, आपके ऊपर मेरा ध्यान है। फिर मैं निश्चिंत हो गया, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी अव्यक्तवाणी की किताब थी, मैं वो किताब पढ़ता था और ये करता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने वो शादी विधि की सारी बातें ये किया कि इसको दूसरा कारण क्या, तो इन्होंने सबने ये किया कि ऐसी शादी करेगी तो फिर एक ज्ञान से निकल सकता है, और बहन भी ऐसी मिली उनको कि सब उसको पता था कि ज्ञान में चलना है सब इधर, तो उसने माँ बाप को बोल दिया कि मैं ज्ञान में चलने के लिए तैयार हूँ, सब बातें ये करे। तो मैंने फिर बाबा को यही बात बताई कि आपने बोला कि जैसे बोल रहे वैसे करो, तो देखो अभी ये बात सामने आ गई, अभी क्या बता दूं। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको एक ही बात बोला है ना कि जैसे बोल रहे वैसे करो। मैं बोला वो शादी की बात कर रही है, तो उन्होंने बोला जैसे बोलना है वैसे करो। मैंने फिर सीधा माँ बाप को बोल दिया सीधा तैयारी करो, ऐसे बोल दिया मैंने। अभी मैंने क्या एक तो तरफ से बोल दिया तैयारी करो, देखता हूँ अंदर दिल थी कि तैयारी हो जाए तो फिर बहन को फिर मना करो वो मेरे लिए ठीक नहीं। मैंने बाबा को साफ बोला कि तैयारी हो जाए तो आप मना करेंगे तो भी मैं करूंगा, क्योंकि किसी के माना किसी की जिंदगी खराब करना है मेरे किसी के जिम्मेदारी माना करना है मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसे कह किया। लेकिन बाबा के टेस्ट और हमारे टेस्ट दोनों का एक एक आपस में कनेक्शन ऐसे चलता रहा कि बाबा बोले कि बाबा मेरे टेस्ट दे रहे मैं बाबा के टेस्ट दे रहा हूँ। तो बाबा को मैंने बोला हाँ बोल दिया, बाबा ने बोला इसके लिए मैंने भी बोला सीधा उनको तैयारी करो, तो मैं भी देख रहा था तैयारी करो। मैं बोला तो फिर आखिरी बाबा आखिरी क्या करते हैं ऐसे, तो हुआ क्या कि 6 मास तक सारे देखने की मैंने सारी तैयारी हो गई पूरी, फिर भी मैं निश्चिंत था। ये बोलते अभी हाँ अभी अंगूठी की तैयारी होगी अभी, तो मैं बोला ठीक है ये करो वो करो सारी किया। मैं वही देख रहा था बाबा आखिरी क्या करते। 6 मास तक ऐसी बात होगी कि जब लास्ट सीन था कि शादी का सारा ये तैयारी करनी थी, डेट फाइनल करनी थी, तो उनके तरफ से वो पार्टी की तरफ से कभी प्रॉब्लम आती थी कभी हमारे तरफ से वो प्रॉब्लम आती थी, तो उसमें 6 मास निकल गया। उसमें मेरे छोटे भाई को रिश्ता आ गया और उनकी जल्दीबाजी थी, तो फिर मुझे बोला कि देखो कि आपके छोटे भाई के लिए अभी सारा है उनकी जल्दीबाजी है, तो हम पहले उसका पूरा कर देते फिर आपके देखेंगे। तो भी मैंने हाँ बोल दिया, बोला ठीक है ये करके। तो क्या हुआ उसका पूरा हो गया। उसके बाद लौकिक वाले खुद ही बोला कि देखो 6 मास 8 मास हो गए आपके पीछे, हमने बहुत सारी तैयारी की लेकिन इतने प्रॉब्लम हम लोग थक गए, अभी हम आपके पीछे नहीं लगे। हमने बोला कि मैंने बोला ही नहीं था कि आप लोग मेरे पीछे लगा। तो बाबा ने क्या कि बाबा हर टाइम मुझे छुड़ा देते थे, लौकिक वाले छुड़ाए और यहाँ मधुबनी आने के बाद सारे जो प्रॉब्लम आ गए उसमें भी मैं यहाँ से भागने की कोशिश किया। मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे संकल्प भी नहीं था कि मैं समर्पित हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ बातें जानता हूँ बाहर लौकिक में बहुत सारी। यहाँ पर भी मैंने सिर्फ लॉन्ड्री का ही नहीं काम किया, बहुत डिपार्टमेंट मेरे से दादी ने यहाँ पर तैयार करके लिए थे। दादी का और दीदी का मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि मैं जो बोलू ऐसे। तो ये बातें जैसे शुरू से बाबा के ऊपर बड़ों के ऊपर मेरा आप विश्वास था, वो क्यों था वो मुझे पता नहीं था।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने भी आपकी शादी का मजा लिया फिर। ओम शांति।